मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, अब आपके प्री एग्जामिनेशन के ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 2 सप्ताह आप कह लीजिए। तो मैंने एक निर्णय लिया है और निर्णय ये लिया है कि अब जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे प्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं उस पर चर्चा करूंगा। इसके बाद फिर जो न्यूज होंगी, जो करंट अफेयर्स के तहत, उन्हें मैं लिया करूंगा। तो पहली बात तो यह है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रश्न आपके मन में हो प्री एग्जामिनेशन को लेकर के, आप बेहिचक लिखें और मान करके चलें कि उसे प्रायोरिटी पर लिया जाएगा, राइट। जहां तक चारों विषयों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात है, वे मैं पूरी कर चुका हूं और मुझे विश्वास है कि डेफिनेटली आप लोग उसे गंभीरता से लेंगे और उसका फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहा था तो मुझे कुछ मेल्स मिले और उसमें कॉन्फिडेंस को लेकर बात कही गई थी कि सर, आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है, डर सा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, इसके लिए क्या करें। तो आज मैं मुख्य विषय के तहत इसी पर बात करने जा रहा हूं और यदि वक्त बचा तो फिर जो सीबीआई के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं इन पर हम लोग कुछ बातें करेंगे। लेकिन आइए पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण फिलहाल जो बात है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसे देख लेते हैं। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं दोस्तों, और अगर आप कुछ लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे तो शायद मेरी बात पर आपको यकीन भी आ जाए, और वो बात ये कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो अपने आप में आपको सिविल सर्वेंट के ट्रेनिंग करने की प्रक्रिया से गुजार देती है। यानी कि आप तैयारी कर रहे हैं, बनेंगे या नहीं बनेंगे हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम बन गए तो आप ये मान करके चलिए कि आधे से अधिक ट्रेनिंग तो आपकी हो चुकी है। हालांकि आप मसूरी एकेडमी नहीं गए हैं, आपका अभी अपने स्टेट में अटैचमेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ आपका, लेकिन आधे से अधिक ट्रेनिंग मुझे लगता है कि आपकी हो गई है। मैं नॉलेज के स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनोविज्ञान के स्तर की बात कर रहा हूं। कितना दबाव और तनाव आपने बर्दाश्त किया है, किस तरीके से आप सेंसिटिविटी के दौर से गुजरे हैं, किस तरीके से डूबते हुए आत्मविश्वास में अपने आप को आपने संभाला है, कितने तनाव और दबाव में आपने उत्तर लिखे हैं, इंटरव्यू फेस किया है, अलग अलग तरह की जो परेशानियां होती हैं, कहीं इमोशनल चैलेंजेस थे तो कहीं मेंटल चैलेंजेस थे तो कहीं फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, इन सबको आपने झेला है और उनके बीच में संतुलन बनाए रखा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि व्यक्तित्व की दृष्टि से आधे आईएएस तो आप बन ही चुके हैं। उसी में जो एक इंपॉर्टेंट है वो है आत्मविश्वास। मुझे कभी कभी यह लगता है कि जो आपका प्री एग्जामिनेशन है, अगर हम उसकी बेस तलाश करें कि किस पर टिका हुआ है, तो उसमें मुझे केवल 2 बातें मालूम पड़ती हैं, या कह लीजिए कि रेल की 2 पटरियां हैं ये, उसमें एक है आत्मविश्वास और दूसरा है स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब है कि आपके मस्तिष्क में तथ्यों की स्पष्टता कितनी ज्यादा है, या आप कैसे किसी भी इश्यू पर सोच करके, विचार करके, तार्किक तरीके से या अनुमान लगा करके ही सही स्थिति तक पहुंच पाते हैं, यानी कि सही विकल्प पर आप निशान लगा लेते हैं। अगर वहां विषय के बारे में आपके दिमाग में स्पष्टता नहीं होगी तो मान करके चलिए कि वहां गड़बड़ी हो जाएगी, और मुझे लगता है कि एक सिविल सर्वेंट के दिमाग में स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है। अगर वो अपने ही स्तर पर अस्पष्ट होगा, डुलमुल नीति का होगा, उसको कुछ बातें समझ में ही नहीं आ रही हैं, कंफ्यूज्ड होगा, तो निर्णय कैसे लेगा वो। तो स्पष्टता, और दूसरा आत्मविश्वास, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और सच पूछिए तो जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है तो ये जो स्पष्टता है ये भी अपने आप में धुंधलाने लगती है। आपने महसूस किया होगा, क्योंकि तब ऐसा लगता है कि यार ये सही है या गलत है, हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, ये होगा या नहीं होगा, आप परेशान से होने लगते हैं, आप अपने अंदर का संतुलन खोने लगते हैं, और यही तो आत्मविश्वास की कमी है। क्योंकि जैसे ही हम संतुलन खोते हैं तो अच्छी अच्छी स्पष्टताएं गड़बड़ा जाती हैं। आप अगर सॉल्व कर रहे होंगे, जो पेपर्स सॉल्व करते हैं आप लोग एग्जामिनेशन से पहले, टेस्ट सीरीज जिसे आप कहते हैं, तो आपका यह अनुभव रहा होगा कि कैसे बिल्कुल आपको मालूम है कि ये इसका यही उत्तर होगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि निशान गलत में लग गया। तो ये जो निशान गलत में लगा है ये क्या है, किसकी वजह से लगाए हमें यह समझना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ा हुआ था, आप जान भी रहे थे और आपने फैसला भी कर लिया था कि नहीं नहीं इसका उत्तर तो ये है, लेकिन फिर भी निशान गलत विकल्प पर क्यों लग गया? सीधी सी बात है कि अंदर एक डाउट क्रिएट हुआ, एक भ्रम की स्थिति आई, और भ्रम की स्थिति तथ्य को लेकर नहीं थी, भ्रम की स्थिति आत्मविश्वास को लेकर होती, क्योंकि जो फैसला हमने किया था कि नहीं यही होगा, उस पर हम टिके नहीं रह पाए, आत्मविश्वास की कमी। अब सवाल यह उठता है कि आपके पास 2 सप्ताह का समय है, अब आप आत्मविश्वास के साथ क्या करेंगे? मान करके चलिए कि आत्मविश्वास तो आपको लाना ही लाना होगा। दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली बात कि जो भी तैयारी होनी थी आपकी तैयारी हो चुकी है। इसका मतलब यह नहीं कि अब आप चुपचाप बैठ जाए और एग्जामिनेशन की डेट की प्रतीक्षा करें, नॉट एट ऑल। जो तैयारी हो चुकी है वो हो चुकी है, बस खत्म हो गई बात। अब आपको अपने इसी तैयारी में बेस्ट देना है, ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी नीति होनी चाहिए कि मेरे पास अब जो कुछ भी है बस इसी का मुझे भरपूर और अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना है, बस मुझे अब नया कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि नया ला करके आप कुछ हासिल भी नहीं कर लेंगे, बल्कि जब आप नए नए की तरफ भागेंगे ना तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होता चला जाएगा। अरे ये तो मैंने पढ़ा नहीं, अरे कहीं इससे भी ना पूछ लिया जाए, कहीं से भी ना पूछ लिया जाए, और कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि अरे बाप रे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ढेर सारी चीजें तो अभी पढ़नी है, फिर क्या होगा मेरा ये पूछ लिया गया तो। दिमाग को बंद कर दीजिए, जो कुछ भी आपने पढ़ा है बस उसे ठोस बनाने के काम में लग जाइए, बस आपने अपने छत ढालनी थी ना, छत ढल गई है, अब उसे मजबूत बनाना है, बस उसमें पानी की सिंचाई करते रहिए ताकि छत मजबूत हो सके। आप रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तैयारी कितनी हुई है, क्या क्या और किया जाना है, इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। यहां तक कि अगर आपकी तैयारी आधी अधूरी भी है और आपने फैसला किया है कि मुझे एग्जाम में बैठना है, तब भी आपको यही नीति अपनानी चाहिए। यह मत सोचिएगा कि अरे होना तो है नहीं तो फिर ठीक है चलो चल बैठ जाएंगे, इतने सारे अटेम्प्ट्स हैं क्या फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, जो भी आप नीतियां अपना सकते हैं उन नीतियों को इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आपको मार्कशीट मिलेगी ना, तभी तो आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि अच्छा मैंने इस तरह की नीतियां अपनाई, इतनी पढ़ाई की, इतना आत्मविश्वास बनाए रखा, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए मैंने ये किया, और तब जाकर के मेरा इतना स्कोर हुआ है। तभी तो आप अगले साल के लिए, अगले साल प्री के लिए अगर आपको आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सही रणनीति बना पाएंगे। इसीलिए इस अवसर का आपको भरपूर इस्तेमाल करना ही करना है, सिलेक्शन होने की दृष्टि से भी, और अगर सिलेक्शन नहीं होने की दृष्टि से भी आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो बेस्ट परफॉर्म करने की दृष्टि से भी। इसकी जो शुरुआत होगी वो आत्मविश्वास से होगी। शायद मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि अपनी तैयारी के बारे में किसी दूसरे से बात मत कीजिए कि मेरी तैयारी कैसी है। ठीक इसी तरीके से दूसरे की तैयारी के बारे में भी मत पूछिए कि भैया तुम्हारी तैयारी कैसी है, क्योंकि अगर आप दूसरे से पूछेंगे कि भैया तुम्हारी तैयारी कैसी है तो बदले में वह भी आपसे पूछेगा कि तुम्हारी तैयारी कैसी है, और पता लगा कि फिर तैयारी पर बात होने लगी है, वो कह रहा है कि अरे तुमने ये पढ़ा कि नहीं, तो फिर ये कह रहा है ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, फिर वो कहेगा कि 2 साल पहले तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, अरे मेरे तुम एक्सपर्ट ने बताया कि इस पर तो इस बार क्वेश्चन आना ही आना है। ये सब फालतू की बातें हैं। नो डाउट कि जो एक्सपर्ट होंगे वो अपना अनुमान लगा करके बताएंगे, मैंने भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताए हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन आप जब बातचीत कर रहे होंगे तो आप उसे उस एंगल से नहीं समझ पाएंगे जिस एंगल से एक्सपर्ट ने बताया है, बात वहीं गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो 15 दिन में तो अब कुछ नहीं हो सकता, मान करके चलिए कुछ भी नहीं हो सकता। स्वाभाविक है कि ऐसे में आप अपने कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करेंगे। देखिए, कॉन्फिडेंस 2 तरह के होते हैं, एक तो है कि जबरदस्ती लादा हुआ कॉन्फिडेंस कि कुछ भी तैयारी नहीं है लेकिन मस्त है कि कॉन्फिडेंट है यार हम, हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा क्या देखा जाएगा, मालूम है कि क्या होने जा रहा है, तो एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस हो गया, यह दुराग्रह है। जो दूसरा कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत अच्छी तैयारी का होता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, आप कह सकते हैं कि जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, वह भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, उसके मन में भी हमेशा भय सा बना रहता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पता नहीं कितना स्कोर कर पाएंगे, और अंततः वो निष्कर्ष यही निकालता है कि पता नहीं प्री में होगा या नहीं होगा। मेंस में लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, और सच पूछे तो प्री में कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, शायद नहीं ही होता। इक्के दुक्के ही मुझे मिले हैं जो प्री के बारे में कॉन्फिडेंस थे, और सच पूछे तो मैं खुद भी अपने आप को उन लोगों में पाता हूं जो प्री को लेकर के कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहा और मेंस को लेकर के कभी मुझे चिंता नहीं रही। तो मैं इसके खेल को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। इसलिए आप एक थॉट यह भी अपने दिमाग में ला सकते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस तो सबका कमजोर होता है, बस मुझे अपने कॉन्फिडेंस को वहां तक संभाल करके रखना है कि मैं क्वेश्चन देख करके घबराऊं नहीं। ठीक है, कठिन आए हैं ना प्रश्न, तो सबके लिए कठिन, आपके लिए भी कठिन, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप ये नीति लेकर के चलिए, अपने दिमाग में एक विचार रखिए, अगर प्रश्न कठिन आए तो सबके लिए कठिन है, तो जो कट ऑफ मार्क्स वो डाउन हो जाएगा, तो ठीक है उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल सेलेक्शन में तो जुड़ने नहीं है। तो आप यही अगर नीति लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने प्रिपरेशन के साथ न्याय कर सकेंगे, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही दिनों के बाद जो प्री एग्जाम होने जा रहा है उसके साथ भी न्याय कर सकेंगे, और मुझे लगता है दोस्तों कि आपको ऐसा करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कुछ बातें आपको बताई हैं, अगर फिर भी कुछ बातें कुछ प्रश्न आपके शेष रह गए हों तो प्लीज आप बिल्कुल संकोच न करें, मुझे लिखें। अब मैं प्रायोरिटी पर आपकी प्री एग्जामिनेशन से संबंधित जो समस्याएं होंगी उन पर बातें करूंगा। करंट अफेयर्स पर बात करने के लिए हमारे पास बहुत बाद में वक्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं आशीष सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से, बबीता सिंह सिंघानिया और महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।